प्रशंसा के फूल बरसाएंगे। तो प्रभुपाद के पास पहुंचे तो प्रभुपाद ने देखा ये क्या है, कृष्ण अकेले। प्रभुपाद ने कहा ये पेंटिंग गलत है, शास्त्रों के आधार पर नहीं है। प्रभुपाद की यही खासियत होती है, आचार्य सदैव शास्त्रों का आधार प्रस्तुत करते हुए सारे जगत को भगवत भक्ति की शिक्षा देता है। और आचार्य का मतलब ये है आचरति इति आचार्य, जो क्या करता है, आचरण करता है। तो प्रभुपाद ने कहा ये शास्त्रों से विरहित है। कई बार लोग पूछते हैं कि इस्कॉन की पेंटिंग बड़ी सुंदर है, हम बाहर की भी पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं लेकिन ये इस्कॉन की पेंटिंग्स बहुत सुंदर होती है, क्यों? अब देखो इधर लगी हुई है पीछे, यहाँ कृष्णा महाप्रभु, तो क्यों? क्योंकि जो पेंटिंग बनाते हैं वो भगवान के भक्त हैं और उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ है, और दूसरा शास्त्रों के आधार पर बनाते हैं, मनगढ़ंत ढंग से नहीं। बाहर की पेंटिंग देखते हैं ऐसी अभी तो इच्छा नहीं होती, कैसे तो लगता है, क्योंकि वो शास्त्रों का आधार नहीं है, वो मनोकल्पना के आधार पर राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाते हैं, देखा होगा आपने मार्केट्स में, तो क्या है मनोकल्पना, तो उसमें भी भक्ति झलकती नहीं है, उससे कुछ प्रेम झलकता नहीं है। तो ये आगे प्रभुपाद को पेंटिंग दिखाने के लिए प्रभुपाद ने कहा ये गलत है। तो बेचारी इतनी सोच के आई थी माता जी जिन्होंने पेंटिंग बनाया था, प्रभुपाद ने उसने पूछे क्या गलत है प्रभुपाद, उन्होंने कहा इसमें कृष्ण अकेले है, कृष्ण अकेले कदम भी नहीं होते, उनके साथ उनके भक्त होते हैं, कम से कम गाय होनी चाहिए, मोर होने चाहिए, या गोपिकाएं होनी चाहिए, उनके सखा होने चाहिए, नंद यशोदा वृंदावन के निवासी होने चाहिए, तभी कृष्ण क्या है पूर्ण है। कृष्ण के साथ इनमें से कोई नहीं है तो ये कृष्ण अपूर्ण है, तो इसलिए भगवान की कथा तभी पूर्ण है जब कृष्ण के भक्त उनके साथ है। तो एक तो हो गई कृष्ण कथा, और दूसरी भी कथा है, वो कौन सी कथा है जिसको शास्त्रों में कहा गया है महाजन कथा, कौन सी कथा, महाजन कथा। तो भक्तों को कई टाइटल शास्त्रों में यूज किया है, एक टाइटल है महाभागवत, कौन से भागवत, महाभागवत, एक है भागवत, एक है भक्त है, या सताम, ये भी शब्द यूज किया जाता है भक्तों के लिए, और महाजन है। तो महाजन तो कोई भी हो सकता है, महाजन आमाय रखता है, महाजन मतलब कितने महाजन, 12 महाजन, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु बलि वया सखी आदि जो है। तो हमें लगता है कि ये 12 महाजन ही महाजन है, लेकिन नहीं, प्रभुपाद कहते हैं महाजन मीन्स फॉलोइंग द परंपरा, जो परंपरा की शिक्षा को आचरण करता है वो व्यक्ति महाजन है। दूसरे एक लेटर में प्रभुपाद कहते हैं महाजन मीन्स द पर्सन हु नोज कृष्णा, महाजन का मतलब है कि जो व्यक्ति कृष्ण को जानता है वो भी क्या है महाजन। आजकल सरनेम भी तो महाजन है, सुना है आपने कभी, सरनेम भी महाराष्ट्र में महाजन होते हैं, तो महाजन सरनेम होने से व्यक्ति महाजन नहीं बनेगा। महा कौन है, कृष्ण है, तो कृष्ण के जो जन है वो कौन है, महाजन है, मतलब कृष्ण के जो सबसे क्लोज के व्यक्ति है, कृष्ण के अपने ओन पर्सन होते ना कि अपना व्यक्ति है, इस बात को छोड़ो प्रसाद मान में एंट्री दे दो दर्शन के लिए, अपना व्यक्ति है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे ब्लड रिलेशन का है, तो कृष्ण का अपना व्यक्ति कोई है तो महाजन। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में कहते हैं ए मन दुर्मति संसार भितरे पड़िया अचिनो आमी, मैं इस दुर्गम संसार में गिर पड़ा हूं, हे गौरांग महाप्रभु, हे कृष्ण आपने क्या किया, तब निज जन कौन महाजने पाठाइया दिल तुम्हें, आपने क्या किया मेरे ऊपर कृपा की, क्या कृपा की, एक एक महाजन भक्तों को मेरे जीवन में भेजा जिसने मुझे क्या किया, मेरा उद्धार कर दिया। महाजन कौन है? गुरु है। तो महाजन, जैसे महाजन सरनेम मिलने से महाजन नहीं बनेगा। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द यूज किया था कि नहीं, हरि के जन, ये तो केवल वृंदावन वासियों का टाइटल है। किसका है? वृंदावन के भक्तों का। जो हरि के अपने लोग हैं वो कौन है? हरिजन है। उनको लगा केवल नाम परिवर्तन करने से इनको समाज उनको स्वीकार करेगा, नहीं, गुण भी क्या हो जाने चाहिए, परिवर्तित होने चाहिए। तो महाजन का मतलब ही है कि जो कृष्ण को जानता है और जिसको भगवान ने ऑथराइज किया है उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो व्यक्ति भी क्या है? महाजन है। इसलिए प्रभुपाद कई स्थानों में इन चीजों का वर्णन करते हैं। और दूसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं, महाजन मीन्स वन हु फॉलोज प्रीवियस महाजन, जो पिछले महाजन का अनुकरण करता है या शिक्षाओं का पालन करता है वो भी महाजन है। प्रभुपाद को किसी ने पूछा शुद्ध भक्त का मतलब क्या है, प्रभुपाद ने कहा जो शुद्ध भक्त को फॉलो करता है वो शुद्ध भक्त है। सरल है। अभी आप सोचेंगे शुद्ध भक्त मीन्स उस ना, शुद्ध भक्त मीन्स जिसमें दो सिंह आए हो, हाँ, कुछ अलग से दिखाई दे वो शुद्ध भक्त है, नहीं। शुद्ध भक्त की सरल व्याख्या है, जो व्यक्ति शुद्ध भक्त को फॉलो करता है वो क्या है? शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद ने वही कहा, प्रभुपाद ने कहा मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में दोष है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जो परंपरा है कृष्ण जो परफेक्ट है पूर्ण है उनकी शिक्षाओं का आचरण उनको फॉलो करता हूं रिजिडली, इसलिए मैं भी क्या हूं? परफेक्ट हूं। तो इसलिए महाजन को जानना आवश्यक है, क्योंकि भक्तों को समझेंगे तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए भक्ति तत्व है, भक्त तत्व है और भगवत तत्व है, ये सारे तत्व हैं। तो भगवत तत्व को समझना है तो व्यक्ति को पहले भक्त तत्व जिसको गुरु तत्व भी कहते हैं उसको जानना चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं उनकी पोजीशन को जानना चाहिए, उनकी दिव्यता को समझना चाहिए, तभी हम वास्तव में भगवान के तत्व को समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्यों हमें भक्तों के बारे में सुनना चाहिए? वैसे तो हमें ईर्ष्या आती है, कोई एक दूसरे के उस भक्त का बारे में बोल रहा है, कब चुप होगा पता नहीं, है ना। जब हम ईर्ष्या करते किसी से, तो जब हम जिससे ईर्ष्या करते हैं उसके बारे में कोई बोलना शुरू करता है तो यहाँ आग जलने लगती है, कानों में लगता है कुछ बंद कर देने चाहिए, तो हम सुनना नहीं चाहते। तो शास्त्र कहते हैं भगवान से भी अधिक श्रेष्ठ है सुनना भक्तों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। किसके लिए श्रेष्ठ है? जो भक्त बनना चाहता है। अब सोचो भक्त बनना है तो किसके बारे में सुनना है? भक्त के बारे में। भगवान बनना है तो किसके बारे में सुनना है? माया के बारे में। भगवान के बारे में तो ठीक है क्योंकि उसमें भक्त भी है। तो मतलब भक्तों के बारे में सुनना ये हमारे भक्ति में तीव्रता लाता है। क्या लाता है? तीव्रता। अभी कार्तिक आया है ना, ये तीव्रता का मौसम है, मतलब वो है ना, इसको मैं हमेशा कहता हूँ, हर साल कोई लेक्चर देना होता है, इसको मैंने नाम ही दे दिया कार्तिक एक्सप्रेस। जैसे दुरंत एक्सप्रेस है ना, मैं जहां भी जाता हूँ इसको कहता हूँ कार्तिक एक्सप्रेस। जो भी इसमें बैठा वो तेजी से पहुंचा वृंदावन। तो वैसे ही अपने भक्ति में जीवन में हम देखते हैं कार्तिक आते तो पूरे अटेंटिव हो जाते हैं, नींद नहीं आती, नहीं, कार्तिक में नींद कम आती है। हर कार्तिक का दूसरा दिन, अभी मैं कल एक डिवोटी मुझे कह रहा था, 15 सेक्टर गया था मैं लेक्चर देने, वहां कहते प्रभु जी मेरे ना कार्तिक में दो मंगल आरती तो वृंदावन गया तो मिस हो गए, परसों रथ यात्रा गया तो कल बहुत थक गया था तो आया नहीं, और फिर दो वैसे में ही नहीं आया, बहुत वैसे घर में थकान थी तो आया नहीं, तो चार पांच मंगल आरती मिस हो गई है, हाँ, तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा वैसे ही कार्तिक का जो आखिरी दिन है ना पंच क्या विश्व पंच का जो आखिरी दिन आने वाला छे वहां तक ही आपको भक्तों के फेस नजर आएंगे मंगल आरती में। जैसे 7 तारीख आएगी तब से यार रेगिस्तान महसूस होगा। तो मतलब मेरा प्रेम भगवान से कब तक है? कार्तिक में। मतलब वही है, मुझे भगवान से लेना देना नहीं है, मैं अपनी खुशी के लिए आ रहा हूं। हमें तो हमेशा कृष्ण चाहिए लाइफ में, है ना। कार्तिक में किस लिए हम आते हैं? अपने लिए आते हैं। वैसे देखो हर कार्य हम अपने आप को पहले थोड़ा चेक करेंगे तो देखेंगे हर कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। मंगल आरती आ रहा हूं मैं खुद के लिए, भागवत में आ रहा हूं अपने लिए, कार्तिक में आ रहा हूं अपने लिए। क्योंकि कार्तिक में बेनिफिट कितना है? 1000 मंगल आरती एक दिन का। आप सोचो मेरे पूरे साल इसलिए तो नहीं आते। कई भक्त कहते प्रभु जी इसलिए तो मैंने पूरा कर दिया पूरे साल का कोटा। हाँ बस, तो ये सब धोखा है, चीटिंग। क्या है? किसको चीट कर रहे हैं हम? जो सबसे बड़े चीटर है। कौन है सबसे बड़े चीटर? कृष्ण है। इसलिए तो कृष्ण को गोपिकाएं कहती है कि आपसे अधिक चीटर नहीं है। आपने हमें बोला आकर उनके साथ आप चले गए और उस रथ के ऊपर बैठे और आपने कहा एक शब्द कृष्ण बोल के गए थे, वो था आयासो। भागवत में आता है बस आए रहा हूं। अभी ये ब्रज की बाला है, इतनी सरल हृदय की नंद यशोदा सारे ब्रजवासी कृष्ण ये बोलते हुए गए कि मैं आ रहा हूं। तो वो आ रहा हूं शब्द इनको जीवित रख रहा था ब्रजवासियों को बस, नहीं तो सारे ब्रजवासी क्या होने वाले थे? शरीर त्याग करने वाले थे। और रोज ये ब्रजवासी उठते थे, सुबह जाते थे, नंद यशोदा को प्रणाम कर देते, रामलीला बना देते कि कृष्ण क्या होने वाले आने वाले हैं। हर दिन इस इंतजार में थे, नहीं तो वो तो शरीर त्याग देते हैं तो, लेकिन नहीं जीवित भी रह रहे किसके लिए? कृष्ण के लिए। क्योंकि कृष्ण आएंगे तो हमें देखेंगे तो हम नहीं होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो भक्ति का यही सार है। कल आपने सुना था ना भक्ति सार नाम के भक्त के बारे में कि भूल गए? तो वैसे भक्ति का सार क्या है? कृष्ण सुखार्थ जीवित रहना, कृष्ण के सुख के लिए जीवित रहना, हर कार्य कृष्ण के सुख के लिए करना। तो ऐसे ये जो ब्रजवासी गण है, लेकिन हम कार्तिक एक्सप्रेस में बैठते हैं लेकिन अपने लिए हम सब कुछ करते हैं। तो क्यों हमें ये भगवत भक्ति के बारे में या भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहिए? क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन हमेशा साल में 11 महीने पूरा ठंडे में चलता है, ठंडे में बहुत ढीला होता है। कार्तिक आता है तो आंखें खुलती है, एक महीना थोड़ा सा रैपिड तीव्रता आती है। तो भक्तों के बारे में वैष्णव के चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर जोश भर जाता है। क्या भर जाता है? जैसे भौतिकता वाले कहते हैं ना अभी जोश लाता हूं, ऑफिस से थक के आया हूं, वो शराब पीने के लिए जाते हैं, है ना, जोश भर के आता हूं। तो भक्त क्या जोश डालते हैं? भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं वो हमें जोश प्रदान करता है। तो ऐसे ही क्यों क्यों सुनते हैं हम? क्योंकि भागवत कहता है सर्वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति राधोक्षजे। क्योंकि हमारे जीवन का असली उद्देश्य है कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत करना। और कैसी भक्ति? दो, अहेतु की अप्रतिहता। कोई हेतु नहीं हो, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, चाहे वो कार्तिक हो या दूसरा कौन सा, चैत्र से लेकर फाल्गुन, जनवरी से लेकर दिसंबर, कोई भी महीना हो उसमें हमें प्रयास करना चाहिए। तो भगवान हमेशा हमें प्रेरित करते हैं कि हम भगवत भक्त बने। और भगवत भक्त बनने के लिए कृष्ण क्या क्या हमें देते हैं आपको पूछता हूं। क्या क्या देते हैं कृष्ण हमें भक्त बनने के लिए? निखिल प्रभु, तुलसी महारानी, गोपी प्रभु। हमारे पास टाइम है, आज फास्टिंग है 12 बजे तक। दिल प्रसाद प्रसाद जावेद आए भक्तों का संग भागवता भगवत गीता भी देते हैं और आध्यात्मिक गुरु देते हैं, मनुष्य जीवन सेवा देते हैं, हलचल विग्रह हैं, धाम है कि नहीं। कितनी चीजें हम सोच नहीं सकते हैं, कृष्ण ने इतनी चीजें दी है हमें, केवल एक चीज हमसे चाहते, क्या? भवा मत भक्तो, गीता में कहते ना मेरा भक्त बनो, बस और कुछ नहीं अपेक्षा हमसे, कृष्ण और कुछ डिमांड नहीं करते। कृष्ण यही कहते, बार बार चिल्लाते गीता में, अरे मेरा भक्त बनो ना, मेरा भक्त बनो ना। लेकिन आप कहते नहीं, आपका भक्त नहीं बनेंगे आप। तो भगवान यही अपेक्षा करते हैं और भगवान अपने भक्तों का गुणगान गीता में सबसे अधिक करते हैं। कृष्ण को आनंद आता है एक चीज में, भक्तों का गुणगान करने में, उसके उल्टा हमारा है, हमें भक्तों का गुणगान करने में कोई आनंद नहीं आता, हमको खिंचाई करने में आनंद उठाते हैं, ढूंढते हैं कैसे उसका पाव पकड़े, खींचते रहे पीछे। इसलिए गीता में एक अष्टकम है, कौन सा अष्टकम है? भक्ति अष्टकम। कहां है? 12वें अध्याय में भगवान ने भक्त के बारे में अष्टकम बोल दिया पूरा। 12वें अध्याय में भक्त, मेरा भक्त कैसा है, ये मेरा भक्त है, ऐसा होते हैं ना हर श्लोक के अंत में, ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है। हाँ सोचो, जिससे प्रेम करते उसी को कहते ना मेरा है। भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त है, फिर उनके गुणों का वर्णन। तो पूरा 12वें अध्याय में ग्लोरीज किसी की भगवान ने गाई है तो केवल अपने भक्त की। और फिर 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं मेरा भक्त कैसा है, वहां भी भगवान ने एक शब्द यूज किया महात्मा। क्या शब्द यूज किया? महान आत्मा है, छोटी आत्मा नहीं है। हम कहते हैं कि आत्मा की साइज कितनी है? बालाग्र शत भागशन। आप कहते हैं आत्मा छोटा है, लेकिन भगवान कहते आत्मा कितना है? बड़ा है, महान आत्मा। क्यों? क्योंकि मेरे महात्मा का मतलब है जिसका हृदय बहुत बड़ा है, उसका हृदय इतना विशाल है कि वो सारे जगत को आश्रय देने के लिए तैयार है, सारे जगत की सेवा करने के लिए तैयार है। जैसे प्रभुपाद है, जो छोटे हृदय वाले होते हैं ना, उनको एक व्यक्ति भी अपने यहां सहन नहीं होता। होता है क्या सहन? केवल प्रभु बहुत हंस रहे हैं। तो ये भौतिक जगत में हम देखते हैं, हाँ छोटे हृदय जिसको कहते हैं दुरात्मा, अरे कहीं महात्मा। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो महात्मा है। प्रभुपाद का फोटो, प्रभुपाद के एक शिष्य बंगाल में जा रहे थे एक बस में, उनके हाथ में चैतन्य चरितामृत बुक थी या कोई बुक था, उसके पीछे एक फोटो था प्रभुपाद का ना, हर बार बुक के एंड में होता है ना। तो एक एस्ट्रोलॉजर भी उसमें जा रहा था बहुत बड़ा, उसने बोला इनका फेस देखकर, कहा ये व्यक्ति ऐसा घर बनाएगा जिसमें सारा जगत समा सकता है। ये किसके वर्ड थे? उस एस्ट्रोलॉजर के जो हम सुनते हैं ना, उसने कहा था। अब देखा कि सही में प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया कि जिसमें सारा विश्व समा रहा है। कई बार हम सोचते कि अरे इस्कॉन में रहना, इस मंदिर के चार दीवारों के अंदर रहना, नहीं, इस्कॉन चार दीवारों का नहीं है। इस्कॉन क्या है? बहुत विशाल है, उसमें हजारों हजारों लोग भी समा सकते हैं। लेकिन हम क्या सोचते, प्रभुपाद ने ये मंदिर अशोक एंक्लेव में जो छोटा सा भाग है यही इस्कॉन है। इस्कॉन तो बहुत विशाल है, हजारों लोग भी आ जाए तो इस्कॉन में इतना सामर्थ्य कि हजारों लोग प्रभुपाद के घर में रह सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त महात्मा है, और वो महात्मा का गुण क्या है? सततम कीर्तयन्तो मां। महात्मा क्या करता है? सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए भगवान को समझना सरल है, लेकिन भक्तों को समझना सरल नहीं है। एक बार अभी हम अंदर में घुस रहे, गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, आप सोच रहे हैं कब गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज का चर्चा होगा, तो एक पास टाइम सुना देता हूं फिर हम वापस आएंगे। तो गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज एक बार एक व्यक्ति उनको मिलने आया तो उसने, वो धनाढ्य व्यक्ति था कोलकाता का, उसने सुंदर शॉल लेके आया था उनके लिए। और गौरकिशोर बाबाजी महाराज तो आप जानते ही हैं, वैराग्य के सर्वोच्च शिरोमणि है गौरकिशोर बाबाजी महाराज का। उसमें आप देख सकते हैं उनका क्या कहते हैं फोटोग्राफ। तो गौरकिशोर बाबाजी महाराज तो उनके पास अपना कहने के लिए कोई धन नहीं था, दो चीजें केवल उनका अपना कहने के लिए थी। एक क्या था, गले में कंठी माला और जप करने के लिए क्या, तुलसी माला, बस यही उनका धन था, इतने विरक्त। और दूसरा कुछ वो अपने साथ रखते थे तो दो किताबें रखते थे बस, इससे अलावा उनके पास कोई अपना धन आदि कुछ साथ सामान नहीं। अभी हम चलते तो पूरे मोबाइल में लेके चलते हैं, कितना सारा साथ सामान रखते हैं। लेकिन वहां गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज की दो ही चीजें थी, एक तो ये दो तुलसी मालाएं और दो बुक्स। और वो दो बुक्स कौन सी थी, नरोत्तम दास ठाकुर की। किसी ने उनको पूछा कि बाबा जी महाराज आप इतने साल से भजन कर रहे हैं तो आप बताइए कृष्ण का प्रेम प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज कहते हैं व्यक्ति के पास केवल दो आना, उस समय दो आना होता था, दो पैसे की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे दो पैसे से, तो वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास दो पैसे हैं तो इनफ है, कृष्ण प्रेम उसे मिल जाएगा। दो पैसे ले लो और मार्केट में जाओ और वहां जाकर दो किताबें खरीदो। किसी ने पूछा कौन सी किताबें, वो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की दो किताबें, एक का नाम है प्रार्थना, दूसरे का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये दो किताबें काफी हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे दो चीजें वो रखते थे और बहुत विरक्त थे। तो एक धराढ़ व्यक्ति आया, उसने बहुत महंगी शाल उनको अर्पित की। तो एक दूसरा धराढ़ व्यक्ति जिसका उनके प्रति श्रद्धा था वो भी वह खड़ा था, उसने देखा अरे बाबा जी महाराज तो इस प्रकार से शाल ले रहे, लग रहा है कि बहुत लालची है। क्या भावना आ गई इसके अंदर, लालची है। उसने सोचा और जो शॉल ले भी उन्होंने और जिस व्यक्ति ने शॉल दी उसको गुणगान करने लगे, कौन, गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज। और दूसरा ये भी नहीं, थोड़ी देर के बाद देखा कोई व्यक्ति आया और उनको धन भी देके गया, थोड़े से पैसे डोनेशन दे दिया, वो भी बड़े हसास के ले रहे थे। इन्होंने सोचा कैसा ये साधु है, कैसा भक्त है, कैसा बाबा जी है, हाँ बड़े हाथ दस के ये सारी चीजें ले रहे हैं, ऐसे लगता है कि बहुत बड़े भोगी हैं। तो ये व्यक्ति का फेथ क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक। और वहां से वो कलकत्ता चला गया व्यक्ति, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिला। उन्होंने कहा ऐसे मैंने देखा है, भक्ति सिद्धांत महाराज बताने लगे। हाँ उन्होंने कहा तुमने एक पार्ट वन देखा, पार्ट टू नहीं देखा। पार्ट टू क्या था, उनके लाइफ में कोई व्यक्ति गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज महान भक्त है ये सोच के उनको डोनेशन भी देता था, धन भी देता था, तो वो कभी अपने पास नहीं रखते थे। एक तो जब भी उनके पास धन आता था वो भक्ति विनोद ठाकुर के पास देते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। एक बार किसी ने उनको 100 रुपए दे दिए, सोचो उस समय 100 रुपए, उस समय उनको 100 रुपए दिए हैं, मतलब उनका जन्म हुआ था 1830 में, वो 10-15 साल वृंदावन में रहे, 30 साल तक तो अपने गृहस्थ जीवन में थे, 21 साल वृंदावन में रहे और फिर नवद्वीप में रहे जाकर। तो वहां जब किसी ने उनको 100 रुपए दिया तो वो तुरंत भक्ति विनोद ठाकुर के पास देते, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वो 100 रुपए बैंक में जाकर जमा कर दिए कि आपको जब चाहे ना तब हम दे देंगे। तो एक दिन अचानक उनको पता चला कि कोई भक्त वृंदावन जा रहा है, मायापुर से कहां जा रहा है, वृंदावन। तो उस समय वो दौड़ते हुए गए भक्ति विनोद ठाकुर के घर, उन्होंने कहा मुझे अभी अभी पैसे चाहिए जो मैंने दिए थे। कितने रुपए दिए थे, 100 रुपए। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तो बैंक में जमा कर दिया है, अब उसके उनके साइन के बिना वो नहीं निकल सकते बैंक से, वो तो चले गए कोलकाता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी चाहिए मुझे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने पॉकेट से उनको निकाल के दे दिए। क्यों चाहिए थे उनको? क्योंकि वो कहते हैं लोग मुझे बड़ा भक्त समझकर धन मुझे देते हैं मेरे एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन वास्तव में मैं उसकी योग्यता धारण नहीं करता हूं। ये धन तो वृंदावन वासियों के लिए है। तो जितना भी धन उनके पास आता था वो देखते थे कोई भक्त वृंदावन जा रहा है तो उसके पास सारा पैसे देते थे। वहां जो ब्रज ब्रज में रह के जो भक्ति कर रहे हैं भक्त साधुगण उनकी सेवा में लगाओ। ऐसे है कौन थे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। इसलिए उनको कहा जाता है नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसा बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। उनका प्रणाम मंत्र है। जो भी आचार्य का अपीयरेंस जैसे अपीयरेंस आता है कम से कम हमें उनका प्रणाम मंत्र क्या करना चाहिए? याद कर लेना चाहिए। कितने साल बीत गए हमें आचार्य के थोड़े बहुत प्रणाम मंत्र भी याद नहीं है। तो कम से कम वो प्रणाम मंत्र में क्या होता है उनके जीवन की सारी जो एक्टिविटीज है उसको एक प्रकार से नट शेल के रूप में दिया जाता है। जैसे प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है क्या है? गौरवाणी प्रचारिणी पाश्चात्य देश तारिणी। तो जितनी भी चीजें हैं प्रभुपाद के अचीवमेंट्स सब इसमें निहित है। अब प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र किसने लिखा था? प्रभुपाद ने लिखा था क्योंकि उनके समय कोई नहीं था, है कि नहीं? जैसे हमारे महाराज का प्रणाम मंत्र किसने लिखा है? लोकनाथ महाराज ने। तो उस हर एक प्रणाम मंत्र में उस आचार्य या गुरु का सारा कार्यकलाप प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज वो भौतिकतावादी व्यक्ति बाहरी रूप से देख रहा था कि ये क्या है? बहुत ग्रेडी है धन के लिए और वस्तुओं के लिए, लेकिन उसने पार को नहीं देखा। उन्होंने वो शॉल और वो धन किसी वैष्णव को दे दिया। तो ऐसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जो अत्यधिक आसक्त थे विशेष रूप से किस चीज के लिए? कृष्ण के नाम के लिए। और उनको जो भगवान के भक्त धाम में निवास करते हैं या धाम वासी हैं उनसे अत्यधिक प्रेम था। एक बार कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया वहां मायापुर में, मायापुर से वो नदी के उस पर जो नवदीप है उसमें वो रहा करते थे रानी धर्मशाला में। तो वहां उस स्थान को कुलिया गांव कहते हैं और मायापुर तो नदी के उस ओर है जहां इस्कॉन टेम्पल है। तो एक व्यक्ति आ गया उनसे मिलने और उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन करना है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो अंधे हो गए थे, उनकी आंखें काम नहीं करती थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए हम कोलकाता लेके जाते हैं। उन्होंने कहा उस इल्यूजरी वर्ल्ड में मैं जाना नहीं चाहता, माया जगत में मुझे मत ले जाओ धाम को छोड़कर। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनसे दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज भक्तिनाथ ठाकुर के अत्यधिक करीब थे। और एक बार जब वो कुलिया ग्राम में निवास कर रहे थे तो मायापुर से एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे बाबा जी का दर्शन करना है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज दरवाजे में एक चेयर के ऊपर बैठे थे, जैसे उसने कहा दर्शन करना है उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। क्या कहते? दर्शन करने के लिए 2 रुपए देने पड़ेंगे आपको। कितने रुपए? किसने बोला? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने। तो उनका असिस्टेंट कहता है 2 रुपए देंगे तभी आपको दर्शन मिल सकते हैं। जैसे उन्होंने 2 रुपए दिए तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अपनी कुटिया का दरवाजा खोला। वो व्यक्ति आया नजदीक, पहले तो दूर से कहते दर्शन करो। एक्चुअली हमें लगता है हम कहते ना साधुओं का दर्शन, दर्शन का मतलब है साधुओं के मुख से क्या करना? सुनना, उनके आदेशों को स्वीकार करना। दर्शन का मतलब यह नहीं है कि केवल आंखों से जाकर उनको देखते रहो, वो आई एक्सरसाइज है, उससे इतना लाभ नहीं है। जितना लाभ हमें मिलता है जब हम क्या करते हैं, सुनते हैं। इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे, गुरु या साधु की कृपा प्राप्त करनी है, वैष्णव की कृपा प्राप्त करनी है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है उनके द्वारा वर्णित कृष्ण कथा को सुनना। उससे बढ़कर कृपा किसी साधु गुरु के पास नहीं है। किसी साधु गुरु वैष्णव के पास कुछ देने के लिए है तो कृष्ण है, और कृष्ण किस रूप से वो संसार को देते हैं, अपने वाणी के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा। तो ऐसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने पूछा, कहां से आए हो? मैं मायापुर से आ रहा हूं। ओ मायापुर से, नजदीक आओ नजदीक आओ, क्योंकि उनको बहुत प्रेम था भक्तों से जो धाम से आते। और नजदीक आओ, उनका हाथ हाथ में लिया और उनको कहा, जहां मेरे प्रभु ने जन्म लिया है चैतन्य महाप्रभु, उस स्थान से तुम आए हो, तुम कितने भाग्यवान हो। फिर उन्होंने कहा, एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये बात महाप्रभु भी सुनेंगे इसलिए मैं बोलना जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि संसार में कुछ करने योग्य चीज है, किसी के शरणागत होने के लिए हमें तैयार होना है तो कहते केवल कृष्ण है, और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए भक्तों के सन में आकर और कृष्ण के नामों का उच्चारण करके। तो इस प्रकार से वो भक्ति गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज सबको ये शिक्षा प्रदान करते थे, और उनका हरि नाम में इतना अनुराग था कि वो कहां जाकर जप करते थे, टॉयलेट्स के अंदर। अब हम टॉयलेट के लिए जाने के लिए टॉयलेट में जाना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो कहां जाके जप करते थे, टॉयलेट में। तो किसी ने पूछा कि आप टॉयलेट में जाकर जप करते, वहां इतना गंध होता है, बदबू आती है। कहते हैं कि जो भौतिकतावादी लोगों का जो बदबू है उससे ज्यादा अच्छा क्या है, टॉयलेट की गंध है। भौतिकतावादी लोगों के संगति में रहकर भोग की भावना की जो गंदगी बदबू है वो असहनीय है, इसलिए बेटर क्या है, उस स्थान में रहकर भी हरिनाम करो। तो एक उनके पास एक मधु नाम का एक भक्त था, उसको लगा बाबा जी महाराज तो बड़े फेमस हो गए, लोग उनको डोनेशन आदि दे रहे हैं, इतना मान सम्मान मिल रहा है, टॉयलेट में जप करते, मैं कहां जप करूंगा। हम भी बड़ा बनने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा नकल मारते हैं, लेकिन नकल के लिए क्या चाहिए, अकल चाहिए। हाँ, जैसे प्रभुपाद घोड़े का डॉक्टर का उदाहरण बताते थे, एक घोड़े का डॉक्टर था, एक व्यक्ति का घोड़ा के गले में कुछ फूल गया था, तो डॉक्टर को बुलाया, इसके साथ उनका असिस्टेंट भी था, तो असिस्टेंट और ये वहां खड़े हो गए, तो असिस्टेंट देख रहा था कि कैसे ट्रीट कर रहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा चलो हथौड़ा दे दो मुझे, हथौड़ा लिया और क्या क्या उसने जहां वो फूला था वहां मारा, घोड़ा बिल्कुल चंगा ठीक हो गया। तो फिर असिस्टेंट को लगा, प्रभुपाद कहते हैं ये तो बड़ा इजी काम है डॉक्टर होना, तो डॉक्टर का असिस्टेंट बनकर छोड़ दिया बनना, वो अकेले अपना धंधा शुरू किया। उसने एक ही चीज सीखी थी। तो जब उसको बुलाया गया किसी एक जगह जहां घोड़ा बीमार था, तो उसने क्या किया, सेम हथौड़ा उठाया घोड़े के ऊपर मार, घोड़ा मर जाता है। तो इस प्रकार से उसको सारे जो लोग पिटाई करते हैं और पुलिस में भेजते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इसी प्रकार से हम भी बड़ा भक्त बनने के लिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है, भक्ति में आकर हम क्या बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिश्चय। हाँ, तो बड़ा भक्त बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, शरणागत विनम्र भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी व्यक्ति देखा बाबा जी महाराज के साथ रह रहे कि उसको लगा इनको इतना मान सम्मान, मुझे भी कुछ होना चाहिए, तो इन्होंने सोचा टॉयलेट में जाके जप करता हूं। ये भी गए जब माला लेकर टॉयलेट में जप करना शुरू किया, बाबा जी महाराज को पता चला, उन्होंने उसको बुलाया। वहां जप करते हो ऐसी खिंचाई की, उन्होंने कहा तुम लोगों से केवल सस्ती प्रशंसा, सस्ता मान सम्मान, थोड़ा धन प्राप्त करने के लिए वहां जाकर चार दीवार के अंदर तुम्हें कुछ दिखाई भी देता है क्या वहां से? हाँ, वो कहते हैं नहीं नहीं चार दीवारें हैं, उससे बाहर क्या देखूंगा। गौर किशोर बाबा जी महाराज कहते हैं तुम्हारा पागल मन भी तो तुम्हारे साथ है, जो दीवारों के उस पार भी देखता है, क्या देखता है? माया को देखता है। वो कहते हैं तुम सस्ती प्रशंसा के लिए ढोंग कर रहे हो, मेरे कुटिया से प्रसाद चुराते हो, पैसे चुराते हो, और रात्रि में असत संबंध रखने के लिए इधर उधर भटकते हो। तो इस प्रकार से उनको गौर किशोरदास बाबा जी महाराज डांट देते हैं और समझाते हैं कि हमें बहुत चीपली नहीं लेना चाहिए भगवत भक्ति के आचरण को। तो एक बार नवदीप के कुछ लोग गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आए और उन्होंने कहा एक गोस्वामी है, बहुत बड़े गोस्वामी नवदीप के, उनका बेटा क्या भागवत कथा करता है, और जब भागवत कथा करता है तो लोग पागल हो जाते हैं, और वो हमेशा गौर 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 बोलता है। क्या बोलता है?
गौर गौर।
हाँ, और तीसरी चीज उन्होंने कही कि वो जो उनका बेटा है, वो ये जो गोस्वामी है रूप सनातन रघुनाथ भट्ट आदि, इनके ग्रंथों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं वो तो केवल धंधा कर रहा है, क्या कर रहा है? भागवतम की कथा करके अपना उधर निर्वाह चलाने के लिए धंधा कर रहा है, वो गौर गौर नहीं बोल रहा है और रूपी रूपी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रूपी रूपी रूपी, धन धन धन। गौर गौर बोलने के पीछे क्या है? जैसे कीर्तन करने के लिए जाते तो क्या कि वो गौर गौर का कीर्तन करता था, लेकिन मन में क्या सोचता था? धन के बारे में, रुपीस के बारे में। वो कहते गौर नहीं निकल रहा है, उसके मुख से रूपी रूपी निकल रहा है। और वो कहते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कि वो गोस्वामियों के ग्रंथों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो इंद्रिय तृप्ति के ग्रंथों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत शक्तिशाली थे और बहुत पावरफुल थे। वो कहते हैं कि एक भक्त को सुधरना है तो साधु के मुख से निकले हुए जो कठोर शब्द हैं उसको सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। एक व्यक्ति उनके पास आया, बहुत टेंशन में था, बाबा जी बन गया था, डिप्रेशन में चला गया था। उन्होंने कहा बाबा जी महाराज क्या करूं? तो कहते हैं तुम केवल ढोंग कर रहे हो एकांत में भक्ति करने का। भक्ति करनी है तो भक्तों के संग में जाके करो, भक्तों के संग में कृष्ण कथा होती है, भक्तों के संग में जब भक्तों के मुख से कृष्ण कथा को सुनते हैं तो माया हृदय से भाग निकलती है। तुम केवल एकांत में बैठकर जब तब करना चाहते हो ताकि लोग आपको कहे कि कितना बड़ा भक्त है, आपकी वाह वाह प्रशंसा आदि करे। कहता है वो कहता है कि मुझे ना वो जो साधु लोग बोलते कठोर शब्द वो अच्छे नहीं लगते। कभी कभी होता है ना कुछ प्रवचन ऐसे कठोर होते हैं कि लगते है बैठो ही ना, भाग जाओ यहां से। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि साधुओं के जो कठोर शब्द है वो हृदय में बैठी हुई माया रूपी जो पिशाचिनी है वो भगाने के काम आते हैं, और वो भाग जाती है, और हृदय में शुद्ध जो कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति है वो स्थापित हो जाती है। तो ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत उन्नत वैष्णव थे और जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अधिक प्रिय थे। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने जो पुत्र हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। किससे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। बल्कि भक्तिविनोद ठाकुर दीक्षा दे सकते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम जाकर किनसे दीक्षा लो? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अपना साइन भी नहीं करना आ रहा था, निरक्षर थे, लेकिन शास्त्र सारे उनके हृदय से निकल पड़ते थे बाहर शास्त्रों का ज्ञान। तो भक्ति सिद्धांत महाराज सबसे अधिक विद्वान थे। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बुक पढ़े उसको आपस में पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं चैतन्य चरितामृत 108 बार पढ़ा। इसने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती चैतन्य भागवत, वो अपने शिष्यों को भी कहते थे इन ग्रंथों को 108 बार पढ़ो, ये तो पूरा लाइफ का अचीवमेंट, हमसे एक बार नहीं पढ़ा जाता। कितने बार पढ़ा उन्होंने? 108। और भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे थे एक पेज को वैसे याद रखते थे, वो पूरा पेज आप बोलोगे जैसे जेरॉक्स करके आपके हाथ में आता है ना, वैसे वो रेडी था उनका। आप कहोगे पूरा बुक मुझे सुनाओ तो ऐसे बैठ के सुना सकते। प्रभुपाद के भी शिष्य है प्रहलादानंद महाराज, उनको कृष्णा बुक का पहला अक्षर से एंड तक पूरा यहाँ बैठा हुआ है। उनको बोलो महाराज कृष्णा बुक सुनाओ पढ़ के, बुक की आवश्यकता नहीं है। वो महाराज ऐसे बैठ जाते हैं और पूरा कृष्णा बुक ऐसे की बोलते जा रहे बोलते जा रहे, कोई वर्ड नहीं। आप अपने हाथ में बुक ले लो कृष्णा बुक इतना बड़ा, महाराज को पूरा कंठस्थ है शुरुआत से लेकर एंड तक। तो ऐसे विद्वान भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो गौर किशन दत्त बाबा जी महाराज के पास जाते हैं और वो कहते कि मुझे ना दीक्षा दे दो। वो कहते हैं मैं योग्य नहीं हूं। कहते पहले किसी ने धोखा दिया था, मैंने उसको दीक्षा दी थी हाँ, लेकिन उसने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए इसलिए मैं नहीं दूंगा, बल्कि उसने उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया था। फिर एक दूसरी चीज उन्होंने कहे कि मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछता हूं कि आपको दीक्षा दो या नहीं फिर बताऊंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज फिर बाद में गए, दूसरी बार गए, इधर मैं भूल ही गया चैतन्य महाप्रभु से पूछने के लिए। ऐसे 10-12 बार गए और 12 बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या कह रहे थे, आज तो मैं भूल ही गया महाप्रभु से पूछने के लिए। लेकिन एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खड़े हो जाते, कहते हैं आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे, आपके चरणों में मुझे नहीं रखोगे तो मैं आज अपने प्राणों को त्याग दूंगा, एक ब्रिज के ऊपर जाकर क्या करूंगा गंगा नदी में जंप मारूंगा। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज कहते नहीं नहीं आज मैं आपको दीक्षा देता हूं। तो उन्होंने दीक्षा दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, एक ही शिष्य बनाया। लेकिन वो शिष्य कैसे था? सूर्य और चंद्रमा के समान। प्रभुपाद वही कहते थे, प्रभुपाद कहते हैं मुझे हजारों हजारों फॉलोअर्स की आवश्यकता नहीं है, एक चंद्र तमो हंति नच तारा सहस्रशः, एक चंद्रमा सारे अंधकार को दूर कर सकता है, हजारों तारों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने एक शिष्य बनाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो सूर्य के समान है। उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रचार या प्रसार करने का। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का भी एक शिष्य हुए कौन? प्रभुपाद, जिन्होंने सारे जगत को अपने भक्ति धारा के द्वारा आलोकित किया। इस प्रकार से गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जिनको कहा जाता था भजनानंदी वैष्णव, कौन से वैष्णव? दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक है गोष्ठानंदी और दूसरा है भजनानंदी। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गंगा में नाव से जा रहे थे, तो नाव से जाते जाते उन्होंने किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि आप में और आपके गुरु महाराज में बड़ा अलग अलग व्यवहार नजर आता है, आप बिल्कुल अलग स्टाइल के हो और आपके गुरु बिल्कुल अलग स्टाइल के हैं, कुछ मिलता जुलता नहीं आपस में। तो कहते हैं क्योंकि क्या अलग अलग चीजें थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सिंह के समान गर्जना करके प्रचार करते थे और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या करते एक स्थान में भजन करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कुछ अलग नहीं है, मेरे जो गुरु है वो बैटरी के समान है और उनसे मुझे क्या आता है चार्ज हो जाता तभी मैं प्रचार कर पाता हूं तभी बोल पाता हूं, वो बल्कि एक स्थान में है लेकिन सारा शक्ति उनसे मुझे आता है। भक्ति सिद्धांत महाराज का इतना फेथ अपने गुरु महाराज के पर था कि उन्होंने कहा कि मेरे गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के चरणों का एक छोटा सा धूलि का कण उड़ के हवा से चले जाए और किसी बद्ध जीव के सर में भी गिरे तो भी उसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो सकता है, इतने पावरफुल है। तो ऐसे निष्ठा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति थी, और आध्यात्मिक जीवन की सफलता का राज यही है, गुरु के प्रति शिष्य की क्या होनी चाहिए, एक निष्ठा का भाव होनी चाहिए। तो ऐसे दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक है भजनानंदी और दूसरे हैं गोस्यानंदी। गोस्यानंदी मीन्स जो प्रचार में लगा रहता है दूसरों के लिए, और भजनानंदी मीन्स जो नॉन स्टॉप दिन रात कृष्ण के स्मरण में लगा रहता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, एक दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए कि दोनों भी क्या है, कृष्ण के लिए प्रिय है। क्योंकि वे जो भजनानंदी भक्त है वो बहुत कम उदाहरण हमारे परंपरा में है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे थोड़े बहुत डिवोटीज हैं जिन्होंने ऐसी भगवत भक्ति, एकांत भक्ति जिसे कहते हैं, वो करके दिखाए, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि उनकी ये भजनानंदी की जो भावना है इसको इंस्पायर कौन करते हैं, स्वयं कृष्ण ही करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे भक्त के हृदय में वो इसलिए प्रचार नहीं करते हैं कि उनके हृदय में दया नहीं है, ऐसी भावना नहीं, उनके हृदय में दया है, लेकिन कृष्ण उनको इंस्पायर करते हैं कि एक स्थान में बैठकर दृढ़ता के साथ हम भगवत भजन करें। तो इस प्रकार से गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज हमारे परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण आचार्य थे, और आज भी उनका जब तिरुभाव मनाते हैं तो उनका जन्म हुआ था वैसे बांग्लादेश में 1830 फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो गांव का नाम था वज्ञान और उनका पहले का नाम था बंशीदास, लेकिन उनका विवाह हुआ था बाद में, उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर वृंदावन में आकर निवास करते हैं और भागवत दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करते हैं, और जो बाबा जी वेश है वो भी वो स्वीकार करते हैं। तो ऐसे वो कुछ साल तक वृंदावन रहे, और जब भक्तिनाथ ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ढूंढ के निकाला तो वो वृंदावन में नहीं रहे, वहां से जल्दी चले आए, कहां, नवद्वीप में। और भक्ति विनोद ठाकुर ने नदी के उस पार अपना घर बनाया मायापुर में, जिसको कहते हैं स्वानंद सुखद कुंज, और भक्ति विनोद ठाकुर रोज इवनिंग में वह भागवत की चर्चा करते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी जहां मर्जी हो वहां से उनके घर पहुंच जाते थे भागवत को सुनने के लिए। तो ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने आज अपना देह त्याग किया था नवद्वीप मायापुर में ही 1695 में, 1695 में। तो जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उनको शरीर को समाधि देने के लिए कई सारे लोग तैयार हो गए, सब अपना हक जता रहे थे कि ये इसका समाधि हम बनाएंगे, कई सारे बाबा जी लोग, क्यों बनाएंगे, किसलिए बनाएंगे, कि समाधि बनाएंगे जो इतने बड़े भक्त है तो लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, प्रणाम करने के लिए आएंगे, प्रणामी दक्षिणा वगैरह देंगे, और दक्षिणा के लिए किसे मिलेंगे, हमें मिलेंगे। इस भावना से उनकी समाधि नवद्वीप के बाबा जी लोग बना रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज को पता चला। भक्ति सिद्धांत महाराज वहां पहुंचे और वहां जाकर उन लोगों ने कहा तुम तो सन्यासी नहीं हो, वैरागी नहीं हो, सन्यास नहीं लिया था उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम हट जाओ यहां से। भक्ति सिद्धांत महाराज ने गर्जना की, उन्होंने कहा कोई ऑथराइज शिष्य कोई है तो मैं अकेला हूं अपने आध्यात्मिक गुरु का। उन्होंने कहा आप लोगों में सामर्थ्य है तो उनके शरीर को हाथ लगाकर दिखाओ क्या। बल्कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं जब शरीर त्यागूंगा तो मेरे शरीर को नवद्वीप के गलियों में घसीटते हुए ले जाऊं पूरे धाम में, ताकि मेरा शरीर धाम के रेत से विभूषित होगा। तो जब ये सब बाबा जी लोग सोच रहे थे उनके शरीर को घसीटते हुए ले जाए और समाधि दे ताकि पैसा मिले, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा आप लोगों को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है आप में, ये सारे जो बाबा जी लोग थे, कौन ऐसा व्यक्ति जिसने एक साल अनैतिक संबंध स्थापित नहीं किए, या तो सारे चुप हो गए। उन्होंने कहा कौन ऐसा है वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है छह महीने के लिए या फिर तीन महीने के लिए एक महीने तक। उन्होंने कहा आखिरी तीन दिन कौन ऐसा व्यक्ति आप में से जिसने अनैतिक संबंध नहीं किए हो, गलत संबंध इलिसिट रिलेशनशिप्स नहीं रखी हो, वही व्यक्ति क्या कर सकता है छू सकता है मेरे आध्यात्मिक गुरु को। तो सारे बाबा जी तो वैसे ही ढोंगे थे, सब चुप हो गए। भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने फिर उनको कल के दिन क्या किया, उनको समाधिस्थ किया नवद्वीप में। और बाद में जब गंगा बह गई तो समाधि का एरिया पानी से डूब रहा था, वहां से उन्होंने समाधि उठाई और जहां अभी जाते हैं ना चैतन्य गौड़िया मठ मायापुर में, वहां उनकी समाधि पुनः स्थापित की। तो ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का चरित्र में तो बहुत सारी उनकी कथाएं हैं, तो आज उनके बारे में हम स्मरण कर सकते हैं, उनसे कृपा की याचना कर सकते हैं कि उनके अंदर जो भगवान के नामों के प्रति आसक्ति है उसका थोड़ा सा लवलेश हमारे जीवन में भी आ जाए, हाँ तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तिरुबावती महामहोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमण।